आपके साथ भी हो सकता है।
और ये जिंदगी है, ये ऐसी सीलन सदा और बदबूदार है जिसने हमारी पूरी जिंदगी को खा लिया। एक ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त रविश जिसके तहत हर हवा का झोंका हमें इधर से उधर ले जाता है। एक कब्र जो हमें बुला रही है, वो मौत है जो हमारी जिंदगी के लिए बाहें फैलाए। ये कामयाबी है, यही रहाई, यही आजादी।
ये मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई मैडम।
फिलहाल तो जारी है। मैंने तो अर्ज किया था कि आज इंजीनियर साहब बेहद मसरूफ हैं।
इतना इंजीनियर न करें मैडम, वो एक सकाफती इदारे के सदर हैं। बिल्डिंग नहीं खड़ी करते जो आप इंजीनियर के रेट लगाए हुए हैं।
आप इत्मीनान रखें जनाब, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं आपके टेलीफोन का इंतजार करूंगा।
जी बिल्कुल,
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम।
अरे वाह प्रोफेसर मुकीमी साहब, आप कब से बैठे हैं? आए अंदर आए, अंदर आए, अंदर आए।
बहुत शुक्रिया।
मैंने कहा था ना उसे किसी तरह टालो।
ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस ये जानना चाहता हूं कि मेरी किताब का क्या बना है।
नामंजूर हो गई।
नामंजूर हो गई? तो क्या कुछ बदलना पड़ेगा?
कुछ लिखा नहीं है।
तो क्या मतलब?
देखें, कुछ तखलीकात ऐसी होती हैं जिनमें इस्लाह की जा सकती है, वो जुजी तौर पर नामंजूर होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनका कुछ नहीं किया जा सकता है, वो पूरी तरह से नामंजूर हो जाती हैं। जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब पूरी तरह से नामंजूर।
ये क्या बात हुई? मैंने खून से ये किताब लिखी है, अपने पूरे वजूद से लिखी है। तुम तो खुद भी साहिब कलम हो, जानते हो कि एक एक लाइन करके किताब लिखना कितना मुश्किल है। मैंने इस किताब पर अपनी पूरी उम्र लगा दी। अब कहा जा रहा है कि मुस्तरद है पूरी तरह से, बगैर किसी वजाहत के। जानते हो क्या है, मैंने इस दुनिया को एक नया नजरिया दिया है, एक नई चीज, तुम्हारे बकौले एक ताकतवर चीज, बहुत ही ताकतवर। इसलिए कोई भी चीज मेरी इस तख्लीक का रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी किताब आखिरकार अपना रास्ता तलाश कर लेगी। मैं पागल हो रहा हूं। जानते हो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा जैसे
जानता हूं, जैसे किसी बच्चे को पैदा करो और फिर उसे कचरे में फेंक दिया जाए। यह जुमला मैं बहुत सुन चुका हूं। सही है, तुमने एक नई चीज दी है दुनिया को, लेकिन यह नई चीज बहुत भयानक है और तबाहकुन।
इस कुरूने उस्ताद की जबान से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। ये किताब एक अदबी तख्लीक है या नहीं, ये ना कहना कि नहीं है। तुम जानते हो क्या है?
हाँ बिल्कुल है, एक अदबी तख्लीक है, लेकिन ये अदबी तख्लीक शैतानी है।
कैसा शैतान साहब? ये किताब मैंने लिखी है, मैंने इसे वजूद बख्शा है। मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान, एक फनकार।
ये किताब गैर अखलाकी है।
सबसे पहले तो ये बताओ, तुम्हें किसने इस बात का लाइसेंस दिया कि यहाँ बैठकर ये फैसला करो कि अखलाकियात क्या हैं क्या नहीं है?
मैं कह रहा हूँ, अखलाकियात का तकाजा है اخلاقیات کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں۔
فن کا ایک ہی اصول ہوتا ہے، تخیل، اور کوئی بھی اصول ایک فنکار سے اس کے تخیل کو نہیں چھین سکتا، کبھی بھی نہیں چھین سکتا۔
دیکھیں مقیمی صاحب، اگر آپ سرکاری کاغذ اور سبسڈی چاہتے ہیں تو پھر حکومتی اصولوں کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔
آپ براہ کرم نہ کاغذ دیں اور نہ سرکاری سبسڈی دینے کی زحمت کریں۔ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جسے آپ خود پیسے دے کر خریدیں گے۔ آپ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی فکر کریں تو بہتر ہوگا، جنہیں کوئی تکیے کی جگہ بھی استعمال کرنے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ مجھے صرف تم سے اشاعت کی اجازت چاہیے، بس۔
خدا لعنت کرے، پورے شیطان ہو۔
یعنی اچھی تھی؟
اچھی تھی، تمہاری عمر کا شاہکار ہے۔
خدا کا شکر ہے کہ ایسے ماحول میں اور ایسے برے دن میں تمہارے جیسا ایک بے رحم نقاد تو ملا جس نے قاعدے کی بات کی۔
اچھا، کیا حقیقت میں جانا چاہتے ہو؟ ایک بدترین شاہکار، ایسا جال جس سے شیطان نے تمہارے ہاتھوں بنا۔ یہ تمہارا کلام نہیں ہے مختار، شیطان نے تمہارے دماغ میں ڈالا اور تم نے لکھ دیا۔
میرے شاہکار کی یہ بہترین تعریف ہے، لیکن مسترد کر دیا۔
ٹھیک ہی کیا انہوں نے، یقین کرو جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو تم سے ڈر لگ رہا تھا۔ اپنی بیوی سے الگ ہونے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں تمہارے نظریات اتنے غلط ہو گئے؟ اب کیا کرو گے؟
ایک فنکارانہ تخلیق کی اپنی زندگی ہوتی ہے، مصنف سے کوئی تعلق نہیں۔ ہیلو اسماعیل صاحب، میں مقیمی ہوں۔ اسماعیل صاحب،
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
کیا حال ہے؟
بہت شکریہ۔
اچھا یہ ہے؟
جی
بتایا نہیں، اسے کیوں نہیں چھاپیں گے؟
کیا فرق پڑتا ہے، میں اسے اپنے پیسے سے چھاپوں گا۔ اس کے مصنف کی جگہ بھی گاردال لکھنا، غیر قانونی طور پر بازار بھیجوا دینا۔
ٹھیک ہے، ضرور۔
اس کی تعداد فی الحال 3000 رکھنا۔ سر ورق کی ڈیزائننگ بھی شاید میں ہی کر دوں اور لا کر تمہیں دے دوں۔
ٹھیک ہے صاحب۔
اس کی قطع بھی تم خود دیکھ لینا، کسی طرح کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔
بالکل نہیں رہے گی۔
وجود، تقدیر، انتخاب، یوم ولادت، باپ، ماں، یہ سب کچھ جبر کے دائرے میں ہیں، ہم انہیں منتخب نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اپنے اطراف پھیلی گندگی اور غلاظتوں میں سے وہی غلاظت اور گندگی چنیں جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو؟
سر، میری نظر میں آپ کو ہرگز منتخب کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک گروہ بھوک سے مر رہا ہے اور ایک گروہ پیاس سے اور ایک گروہ سحری سے۔ آپ کی نظر میں کیا ان لوگوں نے غربت کو منتخب کیا تھا اور جبر کے دائرے میں بارش اور ایک بیابان خشک، اس کا کیا محصول ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اور وہاں جہاں بارش ہونی چاہیے وہاں نہیں ہوتی ایک قطرہ بھی۔ لیکن جس سوال نے میرے ذہن کو پریشان کر رکھا ہے وہ موت ہے۔ موت کیا ہے، جبر کے دائرے میں ہے یا अख्तियार की।
मौत एक पेचीदा मसला है, इतनी आसानी से इसके बारे में फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ। ओडिपस थेबेस शहर से भाग जाता है ताकि अपनी मर्जी से मरे। वो दरअसल अपनी मौत पर अपना इख्तियार चाहता है। यस,
सलाम अलैकुम।
वालेकुम।
माफ कीजिएगा, मैं रास्ता लगता है भूल गई थी।
क्लास का रास्ता या यूनिवर्सिटी का?
एक तरह से दोनों का।
फर्स्ट ईयर में हो?
जी।
तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर वालों को आपकी क्लास में जाने की इजाजत नहीं मिली, मैं यूं ही खुद से आ गई।
इंटरेस्टिंग। मेरी क्लास की क्या चीज तुम्हें अच्छी लगती है?
माफ कीजिएगा, मैं असल में मेरी कुछ क्लासेस जो हैं वो इस तरह की हैं कि बीच में कुछ घंटे फजूल बैठना होता है, तो मैंने सोचा आप यहाँ आ जाएं।
मेरे सवाल का जवाब यही था। आज से तुम इस क्लास की एजाजी तालिबा हो, जाओ बैठो।
बहुत शुक्रिया
सर। मुख्तलिफ अदियान मज़ाहिब में मर्जी की मौत कबूल नहीं की जाती, बल्कि उसे गलत कहा जाता है। क्यों?
अगर इस मौजू पर तुम्हारी इतनी गहरी नजर है तो तुम्हारे लिए मजाहिब अदियान का नजरिया
तुम मुझे कैसे चला नहीं
होना चाहिए।
मैं नकीन हूं।
तुम्हें इनका तजिया नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि ये बात कितनी मौसर हो सकती है। क्या कोई है जो हमें बाज़ चीज़ों की इजाज़त दे, या ये हम हैं जो बाज़ उम्र के लिए अपने आप को इजाज़त देते हैं।
आजकल क्या कर रही हो, हॉस्टल में हो या घर वाले तेरा ना गए?
नहीं भाई, वो तो वहीं है। कुछ दिनों हॉस्टल में रही, फिर सहेलियों के साथ एक घर ले लिया।
क्या बात है तुम्हारी, मैं तो अभी हॉस्टल में हूँ।
अरे वो तो फरहाद है। फरहाद रुको, काम है।
कौन है?
फरहाद मेरा दोस्त है, अभी आती
हूँ। मंगेतर है?
नहीं भाई, मंगेतर कहाँ, अभी आती हूँ। रात में हमें अपने घर बुलाया है।
क्या मतलब, मैं भी आऊँ?
हाँ।
बुरा नहीं है?
नहीं,
ठीक है, आऊंगी।
क्या हाल है?
कुछ नहीं।
क्या पढ़े हो?
देख नहीं रही हो? हीची बहीची, सब आगे अगर इसे पढ़ो तब भी लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा।
मैंने भी इस किताब को पढ़ा है।
पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन अगर जानते कि क्या पढ़ रहे हैं तो एक गोली अपने सर में मार करके खुद को।
परेशान ना हो, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। और हाँ, फरहाद साहब वो वाहिद स्टूडेंट हैं जिन्हें मुकीमी सर ने 100% मार्क्स दिए हैं।
वाकई?
ये किसे अपने साथ लाई हो?
बताया तो था, राना है मेरी पुरानी सहेली, बचपन में हमारे पड़ोस में रहती थी।
अच्छा, बचपन में? बचपन बेवकूफियों का जमाना,
गंदगी में हाथ पैर मारने का जमाना,
माँ बाप के गुलामी का जमाना।
लेकिन मुझे बचपन का जमाना बहुत पसंद है।
देखे मैडम, इसीलिए मैंने कहा था कि तुमने इस किताब को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, या शायद सही तौर पर समझी नहीं, या शायद तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, या हो सकता है कि अक्ल से पैदल हो।
मैं अक्ल से पैदल हूँ? मैं अकल से पैदल हूं या तुम? इस गंदगी में रहते रहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
सुनो मैडम, इस कमरे को चंद मिनटों में साफ किया जा सकता है, लेकिन मैं इसे साफ नहीं करना चाहता। यह कमरा इस दुनिया का आईना है जहां हम सब रहते हैं, جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم اسی غلیظ دنیا میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ سنو،
پیج نمبر 7 پیراگراف 6، میں کھڑا ہوا، کھڑکی کھولی اور شہر میں پھیلی ہوئی کثافتوں پر ایک نظر ڈالی، جس میں ہزاروں بچے اور عورتیں اپنی شراب جیسی کھوکھلی آرزوؤں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ میں اس شہر کو پسند نہیں کرتا، نہیں، اس دنیا کو پسند نہیں کرتا، اور ہر جاندار کو جو اپنی گھناؤنی حرکتوں سے اپنی بقا کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے پسند نہیں کرتا۔ کیچڑوں میں دھستا جا رہا ہوں اور اپنے آخری زمزمے کو سن رہا ہوں، جو درد و الم کے خاتمے اور کامیابی کا نغمہ ہے، آزادی کی خوشی، پرسکون موت، پرسکون موت۔ آہستہ سے مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔
بہت اچھا تھا،
خوبصورت تھا، بس اتنا ہی؟ یہ کتاب صحیح طرح سے جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی اپنی موت کا انتخاب۔ ہماری پیدائش بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنے گھرانے کا انتخاب بھی ہم نہیں کرتے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میرا دل چاہتا کہ مقیمی سر میرے باپ ہوتے۔ میں 16 سال کا تھا کہ گھر سے بھاگ گیا، یہاں تک کہ میری ماں بھی مر گئی۔ میرا باپ گیا اور بچہ پیدا کرنے والی ایک اور مشین لے آیا، میری ہی عمر کی کوئی لڑکی تھی۔ 13-14 برسوں سے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہیں حالات میں تھکن سے چور اچانک ایک چوراہے پر مجھے یہ کتاب بکتی نظر آئی، مستعار نام سے لکھی گئی تھی۔ بہت تلاش کیا اور آخر کار اس کتاب کو لکھنے والا مجھے مل گیا۔ مقیمی سر، وہ میری منزل ہیں، وہ میرا سب کچھ ہیں۔ انہیں کی وجہ سے میں یونیورسٹی گیا، انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا اور میں نے بھی یونیورسٹی چھوڑ دی۔ دیکھو میڈم، اگر واقعاً سمجھنا چاہتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کتاب کو تو صرف ایک بار پھر اس کتاب کو اچھی طرح سے پڑھ لو۔ اس وقت سمجھ جاؤ گی کس گندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
السلام علیکم ابا، آپ نے ہاسٹل فون کیا تھا؟ نہیں، اوفو کتنے فضول ہیں یہ لوگ۔ ابا اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی، دیر ہو گئی وہیں رک گئی تھی، چارجر ہاسٹل میں چھوٹ گیا تھا۔ ابا میری کلاس شروع ہو چکی ہے، کلاس سے آنے کے بعد آپ کو فون کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔
السلام علیکم، معاف کیجیے گا، ایک سوال آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟
پوچھو۔
یہ جو کتاب ہیچ بے ہیچ ہے، اسے آپ نے لکھا ہے؟
یہ جاننا تمہارے لیے اہم ہے؟
بہت زیادہ۔
کیوں؟
مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے۔
تم نے تو کہا تھا کہ یوں ہی میری کلاس میں آتی ہو۔
جھوٹ کہا تھا، اصل میں معاف کیجیے گا، آپ نے وہ کتاب جعلی نام سے لکھی ہے نا، میں نے سوچا شاید سب کے سامنے اگر کہوں کہ اس کتاب کی وجہ سے آئی ہوں تو آپ
تو چالاک بھی ہو۔
اب آپ ہی دیکھیں۔
ہاں تو کیا جاننا چاہتی ہو؟
اصل میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں जिंदगी उतनी ही बकवास है जितनी आपने उस किताब में लिखी है।
अगर मेरे इल्म के दायरे में जितनी भी तलखियां मौजूद हैं उन्हें अपनी किताब में लिख देता तो पूरी दुनिया में आग लग जाती। मैंने तो सिर्फ अपनी तलखियों का एक मामूली हिस्सा इस दुनिया तक पहुंचाया है।
ठीक है, लेकिन क्यों?
क्योंकि सिर्फ अहमक लोग इस दुनिया में जीते हैं। जो भी ये समझ जाता है कि इस दुनिया में उसे कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है वो यहाँ नहीं रहेगा।
हजार बातें सोचती हूँ, हजार काम एक साथ करना चाहती हूँ, एक साथ एक वक्त में।
अच्छी बात।
सच कह रहे हैं? मैं तो समझती थी कि अगर आपको ये पता चलेगा तो आप कहेंगे कैसी बेवकूफ लड़की है। सबसे पहले तो हॉस्टल छोड़ना है। सवाल जवाब और देर से क्यों आई, कहाँ थी वगैरह से मैं थक गई हूँ।
अपनी जिंदगी में वही काम करो जिसमें ज्यादा मजा आए। अरे क्या हुआ?
कुछ नहीं, आपकी बातों पे गौर कर रही थी।
चलते चलते नहीं सो सकते क्या?
असल में आपकी बातें बहुत गहरी हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक नया बाप खुल गया हो।
सुनो, ये अजूबा कहाँ से मिल गया तुम्हें?
कौन? फरहाद। उसने मुझे ढूंढ निकाला।
यूनिवर्सिटी में?
नहीं, नाली से।
बको मत, मैं संजीदा हूँ।
सच कह रही हूँ, यूनिवर्सिटी में एक लाओबाली लड़के की आशिक हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, सूरत शक्ल बातचीत उस पर जान देती थी। सबसे कहता था कि मंगेतर हूँ। मैंने भी यकीन कर लिया। उसके साथ घूमने जाती थी। मेरे घर वाले समझ गए और तहरान आ गए, खूब हंगामा किया। कहने लगा तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। मैंने यकीन कर लिया, उसके लिए घर वालों के खिलाफ खड़ी हो गई। एक रोज क्लास नहीं थी तो उसके घर चली गई। बहुत बेल बजाई, उसकी गाड़ी खड़ी थी लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार वापस आ गई अपनी पक्की दोस्त के साथ। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, तुम सोच भी नहीं सकती। गली की दुकान से एक पैकेट ब्लेड खरीदे और उसके घर के सामने आकर अपनी नसें काट ली। मेरी हालत बिगड़ गई थी, नाली में गिर पड़ी। फरहाद उसका दोस्त था। ये वाक्या 5 साल पहले का है, अब मैं उसकी जानी दुश्मन हूँ। मुझे उसने नाली से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। आंख खुली तो फरहाद को देखा, उससे नजरें मिलते ही सुकून मिल गया। मुझसे कहा कि तुम्हें उस नाली में मरने के लिए छोड़ सकता था लेकिन उस कमीने के लिए नहीं मरने दूंगा। मरना है तो किसी अहम चीज के लिए मरो जो उसके लायक हो।
यानी क्या मतलब?
अब तक व्हील के ऑपरेशन के बारे में कुछ सुना है तुम लोगों ने?
नहीं।
मेरी नजर में ऐसी चीज के लिए मरना चाहिए कि जिसके एहतराम में टोपी उतारी जा सकती हो।
वो क्या चीज है?
खुद मौत। अपनी किताब खोलो, पेज नंबर 27 पढ़ो। अपने बेड पर लेटकर छत को गौर से देख रहा था। छत आहिस्ता आहिस्ता नीचे उसकी तरफ आई। वो छत की तरफ नहीं गया, प्रवास कर रहा था। पर निकल आए थे मौत और जिंदगी के माबेन आखिरी सांस ली और अब वो पुरसकून हो चुका था।
अच्छा था है ना, कम से कम एक कप चाय पीने के लायक तो था।
मैं ले आती हूँ।
नहीं, तुम बैठो, मैं लाती हूँ।
जानते हो फरहाद, तुमने अपनी कहानी में जिस दर्द और रंज का जिक्र किया है वो मुझे पसंद आई।
वाकई?
हाँ हाँ वाकई। मेरे ख्याल में इख्तियार और मुस्तकबिल के इंतखाब का हक एक इंसान की ताकत का उरूज है। लड़की ढूंढो नहीं, कब नहीं मिलेगा, चार ग्लास में निकाल के ले आओ, परेशान मत हो।
जरूर। ये लीजिए।
शुक्रिया।
शुक्रिया
सर। एक सवाल
पूछो।
सर, आपकी राय में रात की इस तारीकी के पीछे क्या है?
तारीकी?
और उस तारीकी के पीछे?
वहां भी तारीकी, तारीकी, सिर्फ तारीकी।
तो फिर इतनी तारीकियों में कैसे जिंदा रहा जा सकता है?
मैं तुम्हारी बात समझ गया। देखो, एक ऐसा रास्ता तलाश करना होगा जिससे तुम इस तारीकी पर फतेहयाब हो जाओ। लेकिन आज के समाज में एक कमज़ोर और एक मामूली शख्स भी एक काम करके हीरो बन सकता है। मिसाल के तौर पर मौत पर कंट्रोल करके, मौत उसे लगाम लगाकर और मौत पर काबू पाकर खुद हीरो बन सकता है।
खुद हीरो बन सकता है।
और इंतखाब तो मौत करती है, मरने वाले मौत का इंतखाब नहीं करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वाह वाह। वालेकुम सलाम मिस मारूफी, गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ?
आप गलती कहाँ कर सकते हैं,
कभी कभी, लेकिन ज्यादा नहीं।
अरे माफ कीजिएगा, आप तो मसरूफ थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया।
नहीं नहीं नहीं, आराम से बैठो, अगर काम करना होता तो यहाँ ना आता। बैठो।
मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आपकी एक नई तख्लीक में रुकावट बनूं।
तख्लीक के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता, कोई भी।
आप हमेशा यहाँ आते हैं?
हाँ, ये मेरी पसंदीदा जगह है, शानदार और पुरसुकून।
मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, दोस्तों ने बताया था कि आप हमेशा यहाँ आते हैं, इसीलिए मैं भी आ गई।
क्यों?
सर, मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं, हजारों सवाल। आपकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। बस मेरा दिल चाहता है कि आपको देखूं, आपकी बातें सुनती रहूं। जब मैं यहाँ आ रही थी तो किसी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, मैंने कहा सर के पास जा रही हूँ, मुकीमी सर से मिलने जा रही हूँ। उसने कहा नहीं जाओ उनके पास, जहन ख़राब होगा, परेशान हो जाओगी। सर मनफी ख्यालात के हामिल हैं।
तो तुमने क्या कहा?
छोड़ें अब।
नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, कहो।
मुझे शर्म आती है, बता दे।
शर्म आती है? ऐसी लगती तो नहीं।
सर मुझे अपनी खिदमत करने दें।
क्या, कैसी खिदमत?
पता नहीं, अगर मैंने आपका कोई काम ना किया तो मैं मर जाऊंगी, खुदा के लिए।
मुझे किसी खिदमत की जरूरत नहीं है।
अभी क्लास है?
हाँ है। तो
अपने घर की चाबी मुझे दे दें।
क्या मतलब?
प्लीज दे दें।
और अब बात करते हैं इश्क की। इश्क जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके बगैर इंसान की जिंदगी की कोई माने नहीं है।
और एक ऐसा सुतून है जिस पर यह कायनात टिकी हुई है। लेकिन मेरी नजर में यह इंसानों की जानिब से बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। इश्क कोई माना नहीं है, कोई वजाहत नहीं है। हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। जिंदगी झूठ और गंदगी से भरी है। हेलो फरीबुस, तुम हो? हाँ ठीक ही हूँ, नहीं बस थक गया हूँ। यूनिवर्सिटी में हूँ, घर जाने का दिल नहीं चाह रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारे घर आऊँगा तो आधी रात हो जाएगी, अपने ही घर चले जाऊँगा।
इजाजत है सर।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
सलाम। बैठो। खुश आमदेद।
मुझे मालूम था आप यहाँ मिल जाएंगे।
और चूंकि मुझे मालूम था कि तुम यहाँ आओगी, इसलिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। ये लो।
बहुत शुक्रिया, लेकिन किस लिए?
इसे खोलो। बरसों बीत गए, अच्छे खाने की खुशबू मेरे घर से नहीं उठी थी। पूरा घर चमक रहा था। अपनी बीवी के मरने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो घर फिर से घर बनेगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं राना। पसंद नहीं आया?
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसी कोई चीज तोहफे में देंगे।
क्यों, रंग नहीं पसंद आया?
नहीं नहीं, मैं सोचती थी कि आप कुछ मुख्तलिफ तरह का तोहफा देंगे।
किस तरह का?
क्या पता, मिसाल के तौर पर कोई किताब या अपना कोई मकाला। लेकिन ये तो हैरान कौन है।
तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है, कितने मजे का खाना बनाया था।
सर
हाँ?
मुझसे बात करें।
किस बारे में?
अपनी किताब के बारे में।
इतने खूबसूरत दिन में उस किताब के बारे में बात कर अच्छा होगा।
मैंने अपने दोस्तों के साथ जलसा रखा है, तय ये हुआ है कि हफ्ते में एक बार आपकी किताब पढ़ी जाए। और अब मैं चाहती हूँ कि आप इस किताब पर दस्तखत कर दें।
ये मेरा फोन नंबर है, अगर किताब की कोई चीज या बात समझ में ना आए तो मुझे फोन कर सकती हो। तुम लोग कितने भाई बहन हो?
जी
मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत खुश हूँ कि तुम जो क्लास में आई हो। जैसे ही तुमने मेरे घर में कदम रखा वहाँ खुशबू बिखर गई।
मेरे घर की रौनक पलट आई। बरसों से मैंने अपने घर को इस तरह नहीं देखा था। चहलकदमी करें।
ख्याल पूरा नहीं सर।
मुझे सर न कहो।
आप मेरे लिए हमेशा सर हैं, ये जान लें। आपने अपनी किताब से, अपनी बातों से जिंदगी की हकीकत मुझे दिखा दी।
बहुत खूबसूरत जगह है, कितना अच्छा मौसम है, और आपने भी मिस रायना अपने वलवले से, अपनी खूबसूरती से जिंदगी की हकीकत मुझ पर वाज़ेह कर दी।
लेकिन मेरा रास्ता तो गलत था।
बरसों बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि सांस ले रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। देर तो नहीं हुई?
वालेकुम सलाम। नहीं,
सैंडविच खरीद लिया अपने तालिबे इल्मी का ज़माना याद करके। वो यादगार दौर जब मैं अनीस अपनी बीवी के साथ, वो क्लास फेलो थी मेरी, मुझे याद है हम लोग पार्क में बैठकर सैंडविच खाते और कोल्ड ड्रिंक पीते थे। कितना अच्छा दौर था, लेकिन अब और अच्छा है। लो।
शुक्रिया, दिल नहीं चाह रहा है।
क्या हुआ? कुछ दिनों से खाती पीती नहीं, क्यों? कहीं बीवी को याद करने की वजह से तो नाराज नहीं है?
नहीं नहीं नहीं, दिल नहीं चाह रहा है सर। आपने यहाँ तो लिखा है।
100 बार मैंने कहा कि मुझे सर न कहो। फिलहाल ये किताब अपने बैग में रखो और सैंडविच खाओ। लो।
आज मुझे घर ढूंढने जाना है।
किस लिए?
थक गई हूँ, हॉस्टल छोड़ना चाहती हूँ।
लेकिन जानती हो कि यह काम कितना खतरनाक हो सकता है?
क्यों
भाई, एक अकेली लड़की इस बड़े शहर में। नहीं, तुम उसी हॉस्टल में रहो तो बेहतर है, इस तरह मुझे भी इत्मीनान रहेगा, वरना हजार तरह की फिक्र होगी।
पहली बार जब मैंने आपसे ये कहा था तो आपका जवाब मुख्तलिफ था। आपने कहा वही करो जिसे करने में ज्यादा मजा आए।
भाई उस वक्त तुम सिर्फ मेरी शागिर्द थी, लेकिन अब।
लेकिन मैंने आपकी इसी बात की वजह से माँ बाप की मुखालिफत की।
सच में?
और क्या।
मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो ये सोचता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जज्बात एक तरफा हों और तुम सिर्फ उस किताब की वजह से मुझे पसंद करती हो। मतलब तुमने एक मेरी बात की वजह से अपने माँ बाप की मुखालिफत कर दी। मेरे लिए बहुत अहम है ये बात। क्या हाल है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है?
कुछ नहीं,
मैं ऑर्डर देना चाहता था लेकिन पता नहीं था कि तुम क्या लोगी।
भूख नहीं है। आते हुए रास्ते में लोगों को देख रही थी, मुझे उन सब से कराहत महसूस हो रही थी, उनकी हिमाकतों से, उनकी उस जहालत से जिसमें हाथ पैर मार रहे हैं।
सच में तुम्हारी तबीयत ठीक है?
हाँ।
छोड़ो इन सबको, इंसान है।
इंसान है, ऐसे इंसान या जानवर जिन्हें जबरदस्ती गलत तमद्दुन पहना दी गई है, सर्द जंजीरों से हाथ पैर बांध दिए गए हैं।
तुमने फिर वो किताब पढ़ी? मैंने मना किया था कि एक बार पढ़ ली वही काफी है।
میں نے اس کتاب کے مصنف کے حصے سے تم سے گزارش کی تھی کہ اسے نہ پڑھنا.
کیوں؟
سر اپنی حالت دیکھو سمجھ جاؤ گی.
آپ بدل گئے ہیں سر.
تم بھی بدل گئی ہو. دیکھو یہ جس کتاب کی تم پوجا کرتی ہو اس دور سے تعلق رکھتی ہے جب میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی بلا وجہ, جس سے میں بہت محبت کرتا تھا. میں بیمار ہو گیا تھا, سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی, ہر ایک سے انتقام لینا چاہتا تھا, ہر چیز سے, ہر انسان سے. اسی لیے میں نے کتاب لکھی. یہ کتاب لکھی تاکہ زندہ رہ سکوں, تاکہ سکون مل سکے. تبھی تم مل گئی. تم ملی اور مجھے اپنا سب کچھ مل گیا. کھویا ہوا یقین, ہاتھ سے چھوٹ جانے والی زندگی کی ڈور, عشق. دیکھو رانا, میں ڈنر کے بعد کہنا چاہتا تھا لیکن تم نے ابھی کہنے پر مجبور کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں.
کیا؟
ہاں جانتا ہوں کہ میں تم سے بڑا ہوں لیکن
تم ہی تو کہتے تھے کہ پرانی روایتوں اور ارزوؤں کو جلا دینا چاہیے. تم ہی تو کہتے تھے کہ ملکیت و مالکیت کو ختم کر دینا چاہیے. شادی صرف ایک بہانہ ہے جس کے سہارے لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کو قانونی شکل دیتے ہیں. شادی بھی ان دسیوں زنجیروں میں سے ایک زنجیر ہے جن سے انسانوں کو جکڑ دیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ باقی رہنے کی اپنی آرزو اپنے بچوں کی شکل میں پوری کرے اور خود سے چاہی ہوئی موت سے بھاگتا رہے.
اوف, چھوڑو اس کتاب کو.
تم کون ہوتے ہو جو مجھ سے یہ کہو کہ میں ایک
میں نے اس کتاب کو لکھا اور اب کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری بکواس کتابوں میں ہی ٹھیک ہے, اصل زندگی میں نہیں.
کتاب کے بارے میں تمیز سے بات کرو.
میں نے یہ کتاب لکھی ہے رانا.
ادبی تخلیق اپنے خالق سے الگ شناخت رکھتی ہے.
ختم کرو یہ بکواس, میں یہ سب سننا نہیں چاہتا, سمجھے تم؟
لیکن انہی باتوں نے میری زندگی بدل دی ہے, میرے خیالات, میرا سب کچھ. مجھے تم سے محبت ہو گئی. میں اس کتاب کے مصنف کو چاہتی ہوں. دیکھو ہیچ بھی ہیچ تم وہ نہیں ہو.
رانا ہم اس موضوع پر بات کریں گے.
چھوڑ دو مجھے, مجھے تم سے گھن آتی ہے. تم ایک جھوٹے انسان ہو. بڑا اچھا کیا جو اپنے اصل نام سے کتاب نہیں لکھی. تم اس تحریر کے لائق نہیں ہو.
رانا, رانا
ہر چیز میں وحشت بھری ہے, شہر پر خاموشی چھائی ہے. ایسی دنیا کو دیکھنے کے لیے پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ زندگی کا کیا فائدہ؟ موت ہی ان ڈھیر ساری تاریکیوں سے فرار کا واحد راستہ ہے. موت ایک پیچیدہ موضوع ہے جسے اتنی آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا. ہمیں ہمیشہ الفاظ کے نہا معنی کی تلاش میں رہنا چاہیے. اور پھر دنیا کی رگ و پے میں ٹھنڈک سما گئی اور وہ گویا کسی لاش سے لپٹ گئی ہو. اپنے اطراف پر ایک نظر ڈالی اور حسرت و یاس سے تمام چیزوں کو غور سے دیکھا. اس کی بس یہی خواہش تھی. کسی کو بلایا ہے؟
نہیں. رانا کیا ہوا؟
فرحات, ویلوں کے آپریشن کا قصہ کیا ہے؟
ویل وہ واحد مخلوق ہے جو تھک جانے اور غمزدہ ہو جانے کے بعد اپنی موت کا انتخاب کرتی ہے, چاہے وہ ان کے بہترین ایام ہی کیوں نہ ہوں. میرے خیال میں خود سے موت کے انتخاب کے معاملے میں وہ پیش گام ہیں. وہ اکٹھا ہوتی ہیں اور پھر ایک ساتھ ساحل کی طرف بڑھ جاتی ہیں تاکہ خود کو آزاد کر لیں, ایک ساتھ مر جائیں. وہ یہ کام اس لیے کرتی ہیں تاکہ ذلیل اور کھوکھلی زندگی کا مذاق اڑائیں, جبکہ وہ زندہ رہ سکتی ہیں, زندہ رہ سکتی ہیں. اور پھر کچھ لوگ انہیں زبردستی دریا میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, کیونکہ اپنی مرضی کی موت کے سلسلے میں بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں.
دیکھو رانا, میں چاہتی ہوں
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود فیصلہ کرے.
میں آپ کے ساتھ ہوں, مجھے اب کچھ نہیں چاہیے. مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ اس بیکار کی دنیا میں ہر چیز بیکار ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں.
تم مطمئن ہو؟
ہاں.
زندگی ذلت و خواری کے ساتھ موت کے سامنے کھڑی ہو گئی. موت مدہوش کن حسن دنیا پر لٹا رہی تھی تاکہ حقیقت کے پیاسے اس کی بوندوں سے اپنی پیاس بجھا سکیں اور اس کی عظمت کو سمجھ سکیں. سمجھ سکیں. پہلے تم نگین, پھر میں, اور پھر رانا. اور موت اپنا مدہوش کن حسن دنیا پر لٹا رہی تھی.
فلور بھی چیک کر لو. تمام کاغذات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اجتماعی خودکشی کی ہے. فائل مکمل ہونے کے بعد تحقیقاتی افسر کے سپرد کر دو.
مجھے بلایا گیا. السلام علیکم.
السلام علیکم.
مجھے فون کر کے یہاں بلایا گیا ہے.
آپ کون صاحب؟
میں مقیمی ہوں.
ہمارے ساتھ آئیے.
دیکھو اس وقت یہاں کی ایک ایک چیز
آپ یہی روکیں.
سے نوٹ کرو, بہت اہم ہے. ہر چیز کو نوٹ کرو. دوسرے فلور بھی دیکھ لو.
مقیمی صاحب آ گئے.
مقیمی صاحب
جی,
یہ ٹیلی فون نمبر آپ کا ہے؟
جی ہاں,
ہم نے آپ کو فون کیا تھا. مقیمی صاحب یہاں تین جنازے پڑے ہیں, دیکھیں آپ ان کو جانتے ہیں؟
لاش.
میرے ساتھ آئیں.
فراز سعودیان.
پہچانتے ہیں؟
میرا ہی اسٹوڈنٹ تھا. نگین, نگین امیریان.
आप कुछ और बता सकते हैं?
Ha ha ha.